नारायणम् नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पांडव लोग और कौरव लोग अपनी अपनी शक्ति का संचय कर रहे हैं। उनमें पांडव लोग शल्य को निमंत्रण दिए थे। राजा शल्य थे, ये मद्र देश के राजा थे और माद्री के भाई थे, पांडवों के मामा लगते थे। परंतु दुर्योधन ने उनका इतना सत्कार किया, पता नहीं बेचारे शल्य को, उन्होंने कहा ये किसने सत्कार किया, युधिष्ठिर ने किया होगा। फिर पता चला दुर्योधन ने किया है। दुर्योधन से कहा भाई सत्कार तुमने किया है तो इसके बदले में कोई मेरे से चीज मांग लो। उसने कहा आप मेरे पक्ष में रहोगे। मन में बड़ा दुख हुआ, आया तो था पांडवों के पक्ष के लिए और अब मुझे पक्ष लेना पड़ेगा दुर्योधन का, अन्याय का, लेकिन जबान दे दी। इधर युधिष्ठिर आदि से मिलने के लिए आए। युधिष्ठिर जी ने कह दिया कोई बात नहीं, जो आपने वचन दिया है उसका पालन करना, परंतु एक काम आप हमारा कर देना, आप सारथी में भगवान कृष्ण के समान बड़े चतुर हैं तो कर्ण के आप सारथी बन जाना और कर्ण को हतोत्साहित करते रहना कि तू कुछ नहीं है, तेरे शस्त्र में कुछ नहीं है, देख अर्जुन कैसा है, तू कैसा है, ऐसे हतोत्साहित करते रहना। बस टेढ़े और अप्रिय वचन कह देना कि ठीक। वहीं द्रौपदी आई। द्रौपदी आई तो द्रौपदी को देख करके शल्य द्रवित हो गए कि द्रौपदी इस जुए के कारण से तुमको बहुत कष्ट सहन करना पड़ा और भरी सभा में सूत पुत्र कर्ण ने तुमको बहुत कठोर शब्द सुनाए थे, उसी का ही मैं सारथी बनूंगा। क्या विचित्र परिस्थिति आ रही है, पर चिंता मत करो, बड़े बड़े महापुरुषों में भी दुख हुआ है। आज त्रिभुवन के स्वामी जो इंद्र है ना, इंद्र और उसकी पत्नी इंद्राणी, इनको भी बहुत कष्ट सहन करना पड़ा था। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा कि इंद्र और इंद्राणी को क्या दुख उठाना पड़ा, यह मुझे जानने की इच्छा है। शल्य ने कहा भरत श्रेष्ठ सुनो, मैं तुम्हें बहुत प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष होने के कारण उन्होंने एक तीन सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था, दूसरे से सुधापान करता था और तीसरे से सब दिशाओं को निगल जाएगा इस प्रकार से देखता था। वह बड़ा ही तपस्वी, मृदु, जितेंद्री और धर्म में तत्पर था। उसका तप बड़ा तीव्र और दुष्कर था। उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल एवं सत्य देखकर महाराज देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ, अरे इतना तपस्वी है। उसने सोचा कि यह इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र न हो जाए। अतः किस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त कर देवे, ऐसा विचार करके उन्होंने उसे फंसाने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं त्रिशरा के पास आई और उसे तरह तरह के भावों से लुभाने लगी, किंतु त्रिशरा अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्व समुद्र के समान अविचल रहे, प्रशांत महासागर। अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास लौट गई और उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे देवराज, त्रिशरा बड़ा दुर्धर्ष है, उसके धैर्य को डिगाना असंभव है, अब और जो कुछ करना चाहे वो आप करें। इंद्र ने तो अप्सराओं को तो विदा कर दिया सत्कार पूर्वक और स्वयं विचार करने लगा कि क्या करूं, तो मेरे पास वज्र है, मैं वज्र को छोड़ूंगा तुरंत नष्ट हो जाएगा। क्रोध में भर करके इंद्र वज्र का प्रहार करने लगा त्रिशरा पर, उसके लगते ही बेचारा वो मर करके गिर गया। इंद्र प्रसन्न हो गया और स्वर्ग में चले गए। त्रिशरा के पिता प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और समदम संपन्न था, तपस्या कर रहा था, इंद्र ने बिना किसी अपराध के मार डाला, इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें। ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी त्रष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डाली और वृत्रासुर उत्पन्न हो गया। त्रष्टा ने कहा, इंद्र शत्रु, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस इतना कहना हुआ कि वह सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर उसी समय इतना बड़ा आकाश को छूने लगे और बोलने लगे, कहिए मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है। त्रष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में चला गया। वहां इंद्र और वृत्र का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवर वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबिती निकल गया है। तब देवताओं ने वृत्र का नाश करने के लिए जम्भाई की रचना की और जम्भाई उसके शरीर में डाल दी। जम्भाई माने उबासी। अब वृत्रासुर को उबासी जोर से आई। जोर से उसने उबाई ली और देवराज अपने अंग को सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर निकल गए। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हो गए। उसके बाद इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध होने लगा। जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्रासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया, तो इंद्र मैदान छोड़कर भागने लगे। इंद्र के भागने से देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, अरे देवताओं, कोई उपाय करो, वित्र ने तो इस सारे संसार को घेर लिया, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, मैं इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूं, आप सब लोग मिलकर भगवान विष्णु के धाम में जाओ, उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय कोई मालूम करो। इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए और कहने लगे, प्रभो, पूर्व काल में आपने अपने तीन डग से तीनों लोकों को नाप लिया था, आप हमारे सब देवताओं के स्वामी हैं, ये सारा संसार आपसे व्याप्त है, आप देव देवेश्वर हैं, सब लोग आपको नमस्कार करते हैं, इस समय सारा जगत वृत्रासुर से व्याप्त है, अतः हे असुर निकंदन आप इंद्र और संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं जो मेरी शरण में आता है उसको निर्भय करना मेरा काम है, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूं जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता ऋषि और गंधर्व विश्वरूपधारी वृत्रासुर के पास जाओ और उसके प्रति साम नीति का प्रयोग करो, इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत हो जाएगी। मैं अदृश्य रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास गए और बोले, हे दुर्जय वीर, ये सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है, इससे देवता असुर मनुष्य सब प्रजा को कष्ट हो रहा है, अतः तुम सदा के लिए इंद्र से मित्रता कर लो ना, मित्रता का आनंद ही कुछ अलग होता है। महर्षियों की बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्र ने कहा, आप तपस्वी लोग अवश्य मेरे माननीय हो, किंतु जो बात मैं कहता हूं यह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वो सब मैं करने को तैयार हूं। मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से दिन में अथवा रात में न मार सकें, इस शर्त पर तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि कर सकता हूं। तब ऋषियों ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार संधि हो जाने से वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु फिर भी सदा वृत्रासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्रासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उस समय वे वृत्र को दिए हुए वर के ऊपर विचार करने लगे, ये तो संध्या काल है, न तो दिन है न रात है, और मुझे अपने शत्रु वृत्र का वध अवश्य करना है। यदि मैं आज इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूं तो मेरा हित नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके इंद्र ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि वहां समुद्र पर पर्वत के समान फेन उठाई दिया, फेन माने जाग। अब वो न सूखा है न गीला है, वो न शस्त्र है न अस्त्र है, अतः यदि मैं इस वृत्रासुर पर फेंकू तो एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने तुरंत अपने वज्र के सहित वह फेन वृत्रासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उस वृत्रासुर को मार डाला। वृत्र के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई तथा देवता गंधर्व यक्ष राक्षस नाग और ऋषि सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली त्रिपुरासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन दुखी हो गए कि मैं देवराज होकर देखो धोखे से मारा, पहले मैंने त्रिशरा को ऐसे मारा, अच्छा नहीं किया। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेत से हो गए। संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने और वनों के सूख जाने पर उजड़ सी गई। नदियों की धाराएं टूट गईं, सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को बड़ा त्रास होने लगा। कोई राजा न रहने से सारी प्रजा उपद्रवों से पीड़ित होने लगी। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो, क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य भार सौंपने के लिए होता ही नहीं था। राजा शल्य कहने लगे, युधिष्ठिर, तब सब देवता और ऋषियों ने कहा, इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उस नहुष को देवताओं के राजपद पर अभिषिक्त करो। बड़ा तेजस्वी है, यशस्वी है, धार्मिक है। ये सब सलाह करके राजा नहुष के पास आए और कहा, आप हमारे राजा हो जाइए। नहुष ने कहा, मैं तो बड़ा दुर्बल हूं, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझमें शक्ति नहीं है। ऋषियों और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, यक्ष, दानव, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत, ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखिए, सबसे बड़ी ताकत धर्म की होती है। संपूर्ण लोकों के स्वामी बनिए और स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्मर्षि और देवताओं की रक्षा कीजिए। इससे आपका धर्म और बढ़ेगा और धर्म बढ़ेगा तो सब शक्तियां बढ़ेगी। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग लोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया और संपूर्ण लोकों का वो स्वामी हो गया। परंतु मनुष्य की बुद्धि भोगों में पड़ जाने के बाद विचलित हो जाती है। युधिष्ठिर, इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्मपरायण रहता था, लेकिन अब वो महान भोगी हो गया। वह समस्त देवोद्यानों में, नंदनवन में, कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूं। फिर इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरे पास क्यों नहीं रहती है और क्यों नहीं आती है? आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुष की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी। उसने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, ब्रह्मन, मेरी रक्षा करो, आप नहुष से मेरी रक्षा करवाइए। मेरा शील, मेरा व्रत इस प्रकार से नहुष नष्ट कर देगा, मैं किसके यहां जाऊंगी? मैं आपकी शरण में हूं, आप देवताओं के गुरु हैं। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती, एक की पत्नी और पतिव्रता का आशीर्वाद दिया है, अतः आप अपने आशीर्वाद की वाणी को सत्य करें। बृहस्पति ने देखा कि इंद्राणी बड़ी भय से व्याकुल हो गई है। बृहस्पति के मन में दुख हुआ कि देवी, मैंने जो जो कहा है वो अवश्य सत्य होगा, तुम नहुष से मत डरो, मैं सच कहता हूं, शीघ्र ही तुम्हें इंद्र से मिलाऊंगा। इधर जब नहुष को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति की शरण में गई है तो उसे और ज्यादा क्रोध आया। उस क्रोध में भरा देखकर देवता और ऋषियों ने कहा, देवराज, ये क्रोध मत करना, आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते, क्रोध करने से तेज नष्ट होता है और आपका क्रोध भी कितना मलिन है। इंद्राणी परस्त्री है, अतः आप उसे क्षमा की दृष्टि से देखें। आप तो क्रोध कर रहे हैं, आप अपने मन को परस्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करें। तभी भगवान आपका मंगल करेंगे। ऋषियों ने इस प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक नहीं सुनी। तब वे बृहस्पति के पास गए नहुष, और बृहस्पति को कहने लगे, देवर्षि श्रेष्ठ, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में रहती है तथा आपने उसे अभयदान दिया है, परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता और ऋषि के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी नेत्रों में आंसू लेकर दीनतापूर्वक रोते हुए कहने लगी कि महाराज, मैं नहुष को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती, मैं आपकी शरण में हूं, आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। इंद्राणी क्यों चिंता करती हूं, देवता अपने स्वार्थ से बोलते हैं, बोलने दीजिए, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। तुमने जिस प्रकार की शरणागति मांगी है कितनी पवित्र है। हे अनिंदिते, तू धर्म को जानने वाली है, शक्तिशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। फिर देवताओं से कहा, देवताओं, आप किस मुंह से ये बात बोलते हो कि इंद्राणी को नहुष के पास भेज दिया जाए। मैंने धर्मशास्त्र का श्रवण किया है, गुरु जी बोलते हैं देवताओं की, मैं धर्म विधि को जानता हूं, सत्य में मेरी निष्ठा है, मैं जाति से ब्राह्मण हूं, इसलिए मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता। जाइए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो मेरे धर्म से और शास्त्र से विरुद्ध हो। ब्रह्मा जी ने हमको पहले ही कह दिया था, जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर भी दुनिया में उसको कोई रक्षक नहीं मिलता, ऐसा दुर्बल चित्त कायर्म पुरुष जो अन्न प्राप्त करता है वो व्यर्थ होता है, उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वो स्वर्ग से गिर जाता है, देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते हैं, उसकी संतान अकाल में मर जाती है, उसके पितर सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्राघात करते हैं। क्या हमको बोलते हो आप? इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं बृहस्पति देवताओं का गुरु होकर इंद्राणी को नहुष के हाथ में देऊं, असंभव। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे उसका और मेरा दोनों का हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, हे इंद्राणी जी, ये स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से टिका हुआ है, तुम पतिव्रता और सत्य निष्ठा हो, एक बार नहुष के पास चली जाओ, तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र नष्ट हो जाएगा और देवराज इंद्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे, अपने कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास चली गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, सुचिस्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, मैं बड़ा ऊंचे पद पर रहने वाला हूं, इसलिए सुंदरी तुम मुझे पति रूप में प्राप्त वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा, हे सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूं। अब ये मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहां गए हैं और वे फिर लौटकर आएंगे कि या नहीं आएंगे। इसकी ठीक ठीक खोज करने पर यदि उनका पता न लगा तब मैं आपके पास आ जाऊंगी। नहुष बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, अच्छी बात है सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा, अब इंद्र का पता लगा लो, किंतु देखो अपने वचनों को याद रखना। इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे कि कहाँ है, कहीं पता नहीं चला। फिर वे देवादिदेव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा, हे देवेश्वर, आप जगत के स्वामी हो, हमारे परम आश्रय हो, सबके पूर्वज हो, सारे प्राणियों की रक्षा करते हैं, सब प्राणियों में प्रवेश किए हुए हैं, इसीलिए आपको विष्णु कहा जाता है। भगवान, आप ही के तेज से वृत्रासुर का विनाश हुआ और फिर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया, आप उससे छूटने का उपाय बताओ। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मेरा ही पूजन कर रहे हैं और मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा, इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने पाप कर्म से नष्ट हो जाएगा। इंद्राणी के लिए आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका सतीत्व, उसका पातिव्रत्य हमारे हृदय में है। भगवान विष्णु की ये सत्य, शुभ और अमृतमयी वाणी सुनकर देवता लोग, ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर पहुंच गए जहां भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला एक बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गया। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए तो नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है तथा अपनी दृष्टि से ही समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर रहा है। यह देखकर इंद्र भय से कांप उठे और फिर वहां से चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य होकर विचरने लगे। युधिष्ठिर, इंद्र के चले जाने पर इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वह बड़ी प्रसन्न हो रही थी कि मेरे पति मुझे मिल जाएंगे। इतना होने के बाद भी जब वे अदृश्य हो गए तो बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी, हे प्राणनाथ, हे मेरे इंद्र। ऐसा कहकर विलाप करने लगी, कहने लगी, यदि मैंने दान दिया हो, हवन किया हो, गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो और पातिव्रत्य यदि मेरे में अविचल रहा हो, मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देख सकी हूँ। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ, वो मेरा मनोरथ सफल करे। पुरुष ने एकाग्र चित्त होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की, प्रार्थना की, हे उपश्रुति जी, जहां पर देवराज इंद्र हो वह स्थान मुझे दिखा दीजिए। इंद्राणी की प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने उनका पूजन किया। देवी, आप कौन हैं? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी मैं उपश्रुति हूँ, तुम्हारे सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से मुक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपस्थिति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे पीछे हो ली तथा देवताओं के वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक बहुत बड़े दिव्य सरोवर पर पहुंच गए। उस सरोवर में एक अति विशाल कमलिनी थी, उसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल की नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी सहित प्रवेश किया। और वहां एक तंतु में छिपे इंद्र में तंतु में छिपे इंद्र को पहचान लिया तथा इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहां कैसे आ गई, तुम्हें मेरा कैसे पता चला। तब इंद्राणी ने उन्हें नहुष की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसके नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी की बात सुनकर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुष का बल बड़ा बढ़ा हुआ है, ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए यह समय पराक्रम प्रकट करने का नहीं है। तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, उसके अनुसार तुम काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो, तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। तुम्हारे इस प्रकार कहने पर नहुष जैसा तुम कहोगी वैसा करने के लिए बाध्य हो जाएगा, और जब वो ऋषियों से पालकी उठाएगा तो जिन ऋषियों ने यज्ञ करके उसको शक्ति दी है वे ही ऋषि इसको शाप भी दे देंगे। देवराज के ऐसा कहने पर सची को ये युक्ति बड़ी अच्छी मालूम दी। उन्होंने कहा, जो आज्ञा। वहां से रवाना हो गई, नहुष के पास गई। नहुष बड़ा खुश हो गया, आओ कल्याणी तुम खूब आई, आओ मैं बड़ा खुश हो गया, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, तुम मेरे पर विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ खा करके कहता हूं जो तुम कहोगे तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, हे जगतपते, मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की प्रतीक्षा में हूं, परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर अवश्य विचार करें। यदि आप मेरी यह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। नहुष ने कहा, बोलो कल्याणी, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं कर सकता हूं। सची बोली, राजन मेरी ऐसी इच्छा है, आप इतने महान हैं, तो आप एक बार इन ऋषि मुनियों को पालकी में जोत कर मेरे पास आए, ये लोग आपकी पालकी उठाएं, आप उनको पालकी में जोते, ऋषि मुनि आपस में मिलकर आपको पालकी में बैठावे और उस पालकी पर बैठे बैठे आप मेरे पास आवे, तब आपकी भी शोभा और मेरी भी शोभा होगी। नहुष ने कहा, सुंदरी तुमने तो मेरे लिए बड़ी अनूठी सवारी बताई, ऐसे वाहन पर तो कोई नहीं चढ़ा होगा, लेकिन तुम्हारी युक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, इससे संसार में मेरा नाम होगा, बड़े बड़े ऋषि मुझे पालकी में ढोएंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम मेरे अधीन हो जाओगे। आओ बस अब तुम तैयारी करो, तुम मेरे अधीन हो ही ऐसा ही मानकर चलो। अब सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि लोग मेरी पालकी लेकर ही तुम्हारे पास चलेंगे आएंगे। इंद्राणी को बड़े प्रेम से विदा किया और इंद्राणी ने कहा, महाराज इसमें मेरा भी गौरव बढ़ेगा, जिस नहुष के मैं अधीन हूं उस नहुष को बड़े बड़े ऋषियों ने अपने कंधे पर बैठाया है, मेरा भी गौरव और आपका भी गौरव। इंद्राणी चली गई और अंदर ही अंदर इंद्राणी सारा बदला लेना चाहती थी, और वो नहुष अत्यंत कामाशक्ति होकर ऋषि मुनियों से पालकी उठवाने की तैयारी करने लगा। इधर सची ने बृहस्पति के पास जाकर कहा, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी अब तो वो बहुत थोड़ी शेष रह गई, अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज करवाइए, मैं आपकी भक्त हूं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ठीक है, बृहस्पति ने कहा ठीक है, तुम दुष्ट चित्त नौ से किसी प्रकार भय मत मानो। यह नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाने के लिए बात सोच रहा है, बस बस बस, इसे धर्म का ज्ञान नहीं रहा है। जिसका मन स्त्री में आसक्त होता हो, जिसके हृदय में क्रोध की ज्वालाएं उठती हो, उनको धर्म का ज्ञान क्या रहेगा। इसलिए अब इंद्र आ ही गया ऐसा समझना, अब बहुत दिन नहीं है, नौस भी बहुत दिन नहीं टिकेगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्निदेव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर इंद्रदेव ने ताल तलैया सरोवर समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते ढूंढते अग्नि उस सरोवर में पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज एक कमलनाल के तंतु में छिपे हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति को सूचना दी कि इंद्र अणुमात्र रूप धारण करके एक कमलनाल के तंतु में छिपे हुए हैं। यह सुनकर बृहस्पति जी देवर्षियों और गंधर्वों सहित उस सरोवर के तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ज्यों ज्यों इंद्र की स्तुति करने लगे तो इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपने पूर्व रूप धारण करके शक्तिमान हो गए। पहले इतना इतना डब्बू आता, अभी मैं फूंक देवे तो यूं करते करते कितो मोटो हो जाते हो, ऐसी उसकी स्तुति गाई तो बड़ा हो गया, तेजस्वी हो गया। और इंद्र आकर के बृहस्पति जी से कहने लगा, कहिए अब मैं आपका कौन सा कार्य करूं, महादैत्य विश्व रूप तो मारा गया और विशालकाय वृत्रासुर का भी अंत हो गया, बोलिए अब आप लोगों की क्या आज्ञा है। बृहस्पति ने कहा, देवराज नहुष नाम का एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है और हमें बहुत तंग करता है, तुम उसका नाश करो। जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय वहां कुबेर, यम, चंद्रमा, वरुण देवता आ गए और इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही वहां परम तेजस्वी अगस्त्य जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है इंद्र कि तुमने विश्वरूप और वृत्रासुर का वध किया है, सारे संसार को बड़ी शांति मिली है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट होने वाला है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इंद्र ने अगस्त मुनि का स्वागत सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हो गए तो उनसे पूछा, भगवन मैं ये जानना चाहता हूं, इंद्र पूछ रहा है अगस्त जी से, मैं ये जानना चाहता हूं कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ, कैसे होगा। अगस्त जी ने कहा, देवराज दुष्ट चित्त नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है वो प्रसंग मैं तुमको सुनाता हूं। वो नष्ट हो गया है, आज नष्ट नहीं होगा, वो नष्ट हो गया। कि कैसे नष्ट हुआ महाराज, सुनिए। महाभाग देवर्षि और ब्रह्मर्षि पापात्मा नहुष की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका बड़ा विवाद होने लगा और अधर्म से उसकी बुद्धि बिगड़ने लगी। और मैं उधर से ही आ रहा हूं, बुद्धि बिगड़ने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी, इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब मैंने उससे कहा, राजन तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो, तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई और हम ऋषि हैं, मेरे सिर पर तुमने लात मारी, जाओ तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। और तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकते रहोगे और इस अवधि के समाप्त होने के बाद फिर कभी स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे साप से दुष्ट इंद्रपद से च्युत हो गया है और अब आप स्वर्ग लोक में जाइए, सब लोगों का पालन कीजिए, यही समाचार सुनाने के लिए आपके पास आया हूं। देवराज इंद्र ने अगस्त्य को प्रणाम किया, सब देवताओं ने भी प्रणाम किया और फिर ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ। इंद्र देवलोक चले गए, इंद्राणी से मिले, आनंद पूर्वक सब रहने लगे। इसी समय वहां भगवान अंगिरा पधारे, उन्होंने अथर्ववेद के मंत्र से देवराज का पूजन किया। देवराज खुश हो गए और उन्हें ये वर दिया, आपने अथर्ववेद का गान किया है इसलिए हम इस वेद में आप अथर्वागिरा नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे और यज्ञ का भाग भी आप प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अथर्वांगिरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा किया। समस्त देवता बड़े आनंद के साथ धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। युधिष्ठिर शल्य कह रहे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्र को अपनी भार्या सहित बहुत कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रु का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े और तुम्हें भी अज्ञातवास भोगना पड़ा तो उनके लिए तुम रोष मत करो, ये तो बड़े बड़े लोगों में आफत आती है। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था, इसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा, चाहे मैं दुर्योधन के पक्ष में रहूं और चाहे मैं उनकी तरफ से युद्ध करूं, तुमको मिलने वाली चीज तुम्हें अवश्य मिलेगी। तथा जैसे अगस्त के शाप से नहुष का पतन हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि का भी नाश हो जाएगा। राजा शल्य के इस प्रकार ढाढ़स बधाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात मद्रराज शल्य उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना सहित दुर्योधन के पास चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके पश्चात यादव महारथी सात्यकी बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना लेकर